अगली आयत में अब वो हिस्ट्री जो आपको सुना चुकी हूँ, आप जरा सुनिए और इंजॉय कीजिए। वाइस नजना को मिना अली फिरौना, और आले याकूब उस दिन को याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन और उसके साथी जो थे, आले फिरौन जो थी उनसे निजात दी। लफ्जी वजाहत में आप काफ़ी डिटेल से सुन चुके हैं ना, अलका लफ्ज यानी उसके हम ख्याल लोग जो उसके साथी थे। यसूमूनकुम सुअल अज़ाबी, वो तुमको चखाते थे बुरा अज़ाब। यसूमून सौमा, यसूमू कहते हैं किसी चीज़, किसी को तकलीफ़ में डालना, किसी को मुश्किल में डाल देना, जानवरों का चराना। फिर क्या करते थे, युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। अब ज़रा यहाँ नोट तो कीजिए, हमने पढ़ लिया ना ये कब हुआ, ज़रा आप ही दोहरा दें ये कब का वाक़ है। जब बनी इसराइल मिस्र में फिरौनियों के हाथों गुलाम बन चुकी थी। क्यों गुलाम बने थे? बुरे करतूतों की वजह से। क्यों करते थे ऐसा, आप ही लोग बताएं। अभी सारी बात बता दी है ना, ख्वाब देखा था कि एक बेटा जो आएगा और वो मरवा देगा, तो फिरौन ने सोचा मारो। और हर दौर के फिरौनों का एक ही गोल है कि मुसलमान जहाँ दूसरी चीज़ों में थोड़े हैं तो पॉपुलेशन में भी थोड़े हो जाए। यहाँ इस पे बात करें, ये जो मुसलमानों को दो बच्चे खुशहाल घराने का नारा दिया, सच बताएं आप जिन जिन लोगों को जानते हैं जिनके सिर्फ दो बच्चे हैं, क्या वो खुशहाल घराना है? अल्लाह की पनाह, घर घर नहीं लगता। एक बच्चा इधर से उधर हो जाए, माँ की जान पे पड़ी होती है। जब दो है तो फिर ख्वाहिश भी यही होती है कि एक बेटा और एक बेटी हो, बड़े आइडियल घराना लगता है। एक बेटा तो किसी का दो, मैं कहती हूँ अल्लाह दो तो दे कम अज़ कम, वरना माँ का दिल, माँ की नमाज, माँ का दुख, वो बाहर भी जाए तो माँ फ़ोन कर रही होती है। ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं बच्चे, बाज़ दफ़ा माएँ भी साइकिक हो जाती हैं। सारा और पूरा ज़िंदगी एक ही उसको स्पून फीडिंग होती है, तू मेरा एक बेटा, तू मेरा एक बेटा। अब वो गरीब अल्लाह का बंदा जब शादी कर लेता है तो भाई वो बहू भी तो कल कहेगी कि अब माँ अगर आपका एक बेटा है तो मेरा भी तो एक ही शौहर है। आप सोचिए कि कितना एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जिसकी एक बेटी है हर बात में कहेंगे मेरी भी तो एक ही है। तो भाई एक ही है तो अब एक है या 10 है, नसीब तो हर एक का अपना अपना है। साइकिक होते हैं, इस्लाम इस चीज़ को नहीं पसंद करता। ये जो बेटों को ज़िबा करने की बात, एक तो वो ख्वाब के साथ रिलेट करती है ना, दूसरा ये गोल भी था कि मुसलमान कम हो, आबादी मुसलमानों की कम हो। आज आप देख सकते हैं कि आज की सोसाइटी में आपको दिखेगा वही चीज़ें जो अपने मुल्कों में बैन है, हमारे मुल्कों में आम की जा रही हैं। अपने मुल्कों में बच्चे पैदा करने पर बेनिफिट्स हैं, सिर्फ माँ को नहीं बाप को भी। 1 साल की छुट्टी, कि माँ छुट्टी ले ले या बाप ले ले, बच्चे को पालो, बच्चे पैदा करो। ऐसे दुनिया के मुल्क मौजूद हैं जो बच्चे पैदा करने पे हजारों डॉलर दे रहे हैं, औरतें बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती। वो कहती हम थक गए, हम क्यों बाउंड हो, हम पाबंद होंगे। उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह के नबी का क्या मामला था? आपने फरमाया कैसी औरतों से निकाह करो जिनके खानदान में कसरत से बच्चे हों, मैं अपनी उम्मत की कसरत पे मान करूंगा। और हमने वो नीले और फिरोजी और पिंक कपड़ों के शौक में कह दिया अफोर्ड नहीं करते, हालांकि हर बच्चा आता है अपना रिस्क माँ के जिस्म से लेके आता है। तो बहरहाल ये एक इशू है। इसके ऊपर यानी अगर साइड पे देखें तो हकीकत है कि कल तो उन्होंने बच्चे ज़िबा करवाए थे जिस्मानी, आज के फिरौनी कल्चर ने हमारे बच्चों को कैसे ज़िबा किया, ज़हनी तौर पे किया। सूरत आले इमरान में आप पढ़ेंगे वल्लाही अक्ल मार दी, वहाँ लफ्ज़ हैं कुरान के जो आपको आज के दौर के मुसलमानों के प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। मत मार दी, सोच बदल दी, उनके परसेप्शंस चेंज कर दिए, कॉन्सेप्ट्स उनके चेंज कर दिए, और हम मुसलमान बड़े खुश हैं। कहा ये सुमूनकुम सुअला साहबी युजब हुना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम, यहाँ देखिए निसाक का लफ्ज़ आया, अबना की जगह बिंत का नहीं आया, गैरत दिलाने के लिए। औरतों को वो ज़िंदा क्यों रखते थे? ताकि उनको अपनी लौंडियाँ बना सकें, उनके साथ अपने दूसरे मामले कर सकें। अल्लाह ताला ने यहाँ गैरत का लफ्ज़ मुसलमानों के सामने बोला कि तुम शर्म करो जब तुम अपनी किताबों से कटते हो, तो तुम्हारी अपनी औरतों की कोखों से दुश्मनों के बच्चे पैदा होते हैं। आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम किस जुमले पे चल पड़े थे अपने इल्म के सफ़र को छोड़कर जिहाद के सफ़र पे, कि एक औरत ने उनको ये कहा था कि तुम तो पढ़ने जा रहे हो, पढ़ते पढ़ाते हो, और हम हिंदुओं के बच्चे पैदा कर रही हैं औरतें। ये लफ्ज़ सुन के वो रह गया कि मैं तो ये किताबी काम कर रहा हूँ, मुझे अमली काम करना है, और गए और उन्होंने जाके हमला किया और मुसलमानों की मदद की। तो बात का खुलासा क्या है कि एक इंसान गौर करे वो किधर है। अगला नुक्ता देखिए कि ये सब कर कौन रहा था, फिरौन करवा रहा था। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बलाओ मिर रब्बी को, ये तो तुम्हारे रब की तरफ से आजमाइश थी। क्या पता चला कि हुक्मरानों का और बड़ी ताकतों का जो जुल्म होता है ना, बज़ाहर देखने में वो उनका जुल्म लग रहा होता है, लेकिन ये अल्लाह की पकड़ होती है। हज़रत मूसा के बारे में ये रिवायत आपने कई बार सुनी होगी कि उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह ताला, आप आसमान पे हैं, मैं नीचे हूँ, मुझे कैसे पता चले कि आप किस बात से खुश होते हैं और किससे नाराज़ हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम पे तुम्हारे अच्छे लोग हुक्मरान हो तो ये मेरी उस कौम पे रजामंदी की अलामत है और इसका अपोजिट मेरे गज़ब की अलामत है। अब आज हम खुद देख सकते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी है कि नाराज़ है। अल्लाह की तरह अल्लाह चाहे तो पकड़ सकते हैं दुश्मनों के हाथ, एक सेकंड में हाथ शल हो जाए जो मुसलमानों पे उठता है, लेकिन क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? इसलिए कि अभी वो मुसलमान ही नहीं थे। इससे एक और बात पता चलती है कि जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है ना, तो फिर अल्लाह की तरफ रजू करो। इसमें कौमों को एक नुक्ता मिलता है कि जब बच्चे को इंजेक्शन लगता है ना, आप देखिए इमेजिनेशन में लाएं, माँ अपने बच्चे को खुद इंजेक्शन लगवाती है, क्या उसमें शर होता है? नहीं, बच्चे को समझ आ जाती है कि इंजेक्शन लगवा माँ रही है तो इसमें मेरी खैर ही होगी। इसमें एक तो ये नोट करें, हर शर में खैर है। आज अगर मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती हो रहा है ना, तो जो लोग दीन का शऊर रखते हैं उनको खुश होना चाहिए। क्यों? कि इसमें खैर या किसी से तो हमारी सोई भी गरज जाग रही है, इसी से तो ग्रज पैदा होता है दिलों में। हाँ, और दूसरी बात देखिए कि बच्चे को फिर माँ ही की गोद में सुकून मिलता है। आज अगर हमें दुनिया में उम्मत मुस्लिमा पे जुल्म और सितम और अपनी ज़ाहरी या दूसरी ज़िंदगी में दिखता है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ हमें अल्लाह ही के दामन में आना पड़ेगा। अब अल्लाह की गोद में तो हम नहीं आ सकते ना जैसे माँ की आते हैं, तो मतलब यह है कि वही वस्ताईन बिस्सब्री वस्सलात, तुम मेरी तरफ आओ, फिर देखो मैं तुम्हारी कितनी मदद करता हूँ। और फिर मदद आई। उस वक़्त बनी इसराइल क्या थे? यहाँ पे एक जुमला नोट कराऊंगी, गौर से सुनिएगा। अभी तक बनी इसराइल कौन थे? गुलाम थे ना, और नेक थे। अल्लाह की मदद क्या आई? वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजैनाकुम, फिर हमने फाड़ दिया तुम्हारी खातिर दरिया को, फिर हमने तुमको निजात दी। वग़रकना आला फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे और फ़िरौनी डूब रहे थे। सुन चुके हैं ना इस मंजर को। यहाँ देखिए कि बनी इसराइल का जो इस वक़्त तक का सब्र थे ना, ये कौन सा सब्र है? जबरी सब्र है। सब्र की कल बात की है ना, वस्तईनु बिसब्र। मैं सबर के 10-12 पहलू आपको लिखाऊंगी आगे जाके, लेकिन आज सिर्फ ये लिख लें कि सबर एक वो होता है जो मजबूरी में कराया जाता है, इस्तरारी सबर, फोर्स पेशेंस, इस्तरारी सबर या जबरी सबर। ये कौन सा होता है? जब बंदे पे कोई मुश्किल डाल दी जाती है, बीमारी, तकलीफ, अब रोएं धोएं जो भी है, खुद ही गुजरते हैं ना। अभी तक बनी इसराइल का जो सबर था ना, ये मजबूरी का सबर था, और इसमें आप देखिए ये कामयाब है। तभी तो अल्लाह ने समंदरों में रास्ते बना दिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। फिरौन सबके सामने डूब गया, फिरौन को अल्लाह ताला ने इतनी पकड़ दी। सूरत अल अराफ आयत 130 में हम पढ़ेंगे उन 8 अजाबों का किस्सा जो फिरौन की इस बड़ी पकड़ से आए थे पहले, कि जिसमें इनके ऊपर कहत और बीमारियाँ और खून और दम और क्या कुछ इनके ऊपर हुआ था, लेकिन इन्होंने इसको नहीं माना। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने एक बड़ी चीज़ में इनको रख दिया। अब यहाँ आप देखिए कि फिरौन के डूबने के साथ ही बनी इसराइल जो है ना, उस इस्तरारी सबर से निकल गए और इख्तियारी सबर अब आगे होगा। वो कौन सा होता है? नेमतों का। समझ लें, अपने लफ्जों में समझें, फिर बाद में लिखिएगा। एक वो सबर होता है जो बुरे दिनों में हमें करना पड़ता है, हम सब उसको सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैयत वाले घर में भी जाके कहते हैं सबर करो, चोरी हो जाए तो भी कहते हैं सबर करो, ये बहुत आसान होता है, लोग कर लेते हैं। दूसरा सब्र होता है जिसको आप इख्तियारी सब्र कहते हैं, पेशेंस विद योर चॉइस। ये खुशियों का सब्र होता है, जब अल्लाह नेमते देता है, माल देता है, आजमाए। यहाँ क्या था? पहले गुलाम थे, पिसे हुए थे, अब जूतियाँ सीधी कर रहे थे ना फिरौन की, लेकिन मजबूर थे, सब्र करते गए। अल्लाह की मदद आई, मुल्क बन गया, मिस्र के असबाब ख़त्म हुए, अल्लाह ने शाम के रास्ते खोल दिए। आगे आप देखिएगा, अब इसके बाद जो इनका सबर है ना, वो इनकी चॉइस का सबर है जिसमें ये फेल हो जाएंगे। आप इसको जोड़िए ज़रा अपने ऊपर। 1947 से पहले हम मुसलमान क्या थे? बरेसगीर वाले, जबरी सबर था। पाकिस्तान बन गया, वल्लाह ही मैं पूरे शऊर से ये जुमला बोलने लगी हूँ कि जिस तरह उस वक़्त समंदर में रास्ता बनना एक मौजज़ा था ना, इस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का वजूद भी एक मौजज़ा था। कोई असबाब, कोई हालात नहीं, ये आगे कहीं मौका मिला तो आपको हिस्ट्री सुनाऊंगी। ये सिर्फ अल्लाह ने बनाया था, और पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। अगर आज इसकी कदर हमने नहीं की ना, तो आज हम बनी इसराइल के उसी दोराहे पे खड़े हैं कि जहाँ फिरौन के डूबने के बाद यती हूँ न फिलहाल, एमलेस लाइफ है हमारी। 60 ईयर से ऊपर हो गया हमें और अभी तक इधर वॉन्डर ब्लाइंडली फिर रहे हैं, ना हमने वो काम किए जो करने थे ना हुए। ये वक्त बड़ा मुश्किल होता है। आज हम पाकिस्तान बना के उनको ज़्यादा खुशी दे रहे हैं जितना हम उनके पास थे। कल तो उनको गैरों को आप देखिए, हमें जॉब्स भी देनी पड़ती थी, हमारे लिए कुछ मेहनत रोटी पानी कमरा करते ना, रहते आज हम अपने मुल्क में हैं और ग़ुलामी हम उनकी करते हैं। तो ये कौमों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत पकड़ है। फिर एक और चीज़ देखिए कि दरिया का फटना बनी इसराइल के लिए नेमत था लेकिन फिरौन के लिए अजाब था। तो इसे एक अमल की बात नोट करें, किसी के पास कोई नेमत देके कभी रश्क ना करें, ये ना कि मुझे मिल जाए, हो सकता है उसके लिए वो नेमत है आपके लिए वो नुकसान की चीज़ बन जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने दरिया को फाड़ा और फिरौनी सामने डूब रहे थे और बनी इसराइली जो थे वो देख रहे थे खड़े। कहीं और भी तो फिरौन अपने घर में मर सकता था ना, क्यों फिरौन को वहां डुबोया? ताकि लोगों को यकीन आ जाए। और आप देखिए कि उसकी डेड बॉडी पानी पे आ गई, पानी ने भी उसको कबूल नहीं किया। आज आप उसकी शक्ल देखें तो खौफ खाएं, पट्टियों में बंधा हुआ फिरौन, आज भी उसकी लाश डिस्कवर हो चुकी है, दिखाएंगे आपको, आप जाएं तो वेबसाइट पे है, मेरा ख्याल है आप देख लीजिए, कि कराहत आती है देख के कि जो अल्लाह के नाम के आगे बड़े बनते हैं, नुकसान देते हैं, उनका हाल क्या होता है। बहरहाल बनी इसराइल का एक दौर पूरा हुआ। यहाँ से इस हिस्से से हमारे लिए अमल की बात क्या है कि जो कौम अपने लिए कुछ मेहनत करती है, कोशिश करती है, अल्लाह की मदद आती है, हकीकत में कुर्बानियाँ दी हम लोगों ने, हमें भी ज़मीन का टुकड़ा मिल गया, लेकिन असल आजमाइश आगे आती है। और जब अल्लाह किसी का हाथ पकड़ लेता है तो कुछ हो फिर उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता। और इससे पता क्या चलता है कि जालिमों का अंजाम बिलाहर बुरा होता है, वो माजी के हों, हाल के हों या मुस्तकबिल के हों। अब क्या हुआ, बनी इसराइल आज़ाद, पहला मिशन पूरा,